हरे राम 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 हरे
गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरात्विषे नमः वाञ्छाकल्पतृभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्री पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी मंदिर इस्कान दिल्ली में आज प्रातः भागवत सत्संग में महाभागवत पुरुष श्री वृंदावन दास ठाकुर के आविर्भाव तिथि में उनके गुणगान के लिए आप पधारे, आप सबका स्वागत है। भागवत दो भागवत होते हैं, भागवत पुरुष और भागवत ग्रंथ, तो दोनों की महिमा नैष्ठिक की भक्ति देने वाली है। जो नैष्ठिक भक्ति में जो निष्ठा आनी चाहिए, प्रायः भक्ति में हम अटक जाते हैं अनर्थ निवृत्ति में, उसके बाद आती है निष्ठा। तो नित्य भागवत सेवया, नित्य भागवत का सेवन करने से, भागवत का सेवन मतलब सेवा, तो भागवत ग्रंथ की सेवा है श्रद्धा से श्रवण करना, और भागवत पुरुष की सेवा है भागवत सुनना, दोनों का अर्थ एक ही है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत ईशानु कथा जो विषय है, वो अंतःकरण में जो कर्म की वासनाओं के बीज हैं उनको भी जड़ से उखाड़ देता है। तो ईशानु कथा का मतलब भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा। तो ये जो आज की कथा वृंदावन दास ठाकुर के आविर्भाव तिथि की है, ये ईशानु कथा के अंतर्गत भगवान के महाभागवत पुरुष की महिमा है, जो असल में भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं। भगवान की कृपा की मूर्ति भगवान के भक्त होते हैं, जैसे हम कहते हैं श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपा मूर्ति, तो भगवान की कृपा की मूर्ति जिस जो भगवान की कृपा जीव को मिलती है वो इन वैष्णव के माध्यम से मिलती है, यही कृपा का जो है देने वाले हैं। तो आज के दिन वृंदावन ठाकुर के चरणों में प्रणाम करते हुए अचेतना चरितमृत में कविराज गोस्वामी ने आदि लीला और अंत लीला में कुछ श्लोकों में कविराज वृंदावन दास ठाकुर की महिमा का वर्णन किया है। सो एक नजर इसके ऊपर डालते हुए आगे चलते हैं। अगर यहां से शुरू करें तो अच्छा लगेगा। ये न कृष्ण नाम यदि है बहुबार, कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, अगर कोई बार बार कृष्ण नाम लेता है, तबु यदि प्रेम नहीं अश्रुधारा, और फिर भगवान का नाम लेते हुए आंखों से आंसू नहीं गिरते हैं और गला नहीं रुंध जाता है, तभी जाने अपराध तहाते प्रचुर। इसका मतलब अभी प्रचुर अवतार हो रहे, अपराध हो रहे हैं जप करने में। कृष्ण नाम बीज ताहि ना हरे करे अंकुर, इसका मतलब कृष्ण नाम के बीज का अभी अंकुर नहीं किया है। और फिर एकदम कहते हैं चेतन नित्यानंदी नाही एश विचार, नाम हैते प्रेम देन बहे अश्रुधारा। अगर चेतन महाप्रभु और नित्यानंद की कृपा से उनके नाम के ऊपर पूर्ण विश्वास हो, तो फिर कृष्ण नाम जपने से जो प्रेम का प्रकट होना है वो तत्काल हो जाता है। तो इसलिए हरे कृष्ण मंत्र से पहले पंचतत्व मंत्र जपने का जो प्रथा परंपरा में है कि उनकी कृपा से ये मंत्र जो महामंत्र है उसका प्रभाव होगा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि चेतन महाप्रभु और नित्यानंद उनकी शिक्षा के अनुसार वही लिखा है, तरणाद अपि सुनिशे न तरोर अपि सरुचुण अमानी न मान दे न कीर्तन ये सदा हरि। ऐसे इनकी कृपा से कीर्तन में आगे रुचि होगी। और फिर लिखते हैं स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और बहुत उदार है। तारे ना भजी ले कभू ना है निस्तार, उसके भजन के बगैर कभी निस्तार नहीं होगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो करंसी जो 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 रुपया आज चलता है नया वाला नोट, चाहे वो काला हो या पिंक हो, लेकिन पुराने वाला नहीं चल सकता है। तो ये चेतन महाप्रभु करंट करंसी है, वही आपका उधार कर सकती है। इसलिए अगर कोई उसका नहीं लेगा नाम तो निस्तार नहीं होगा। और अब कहते हैं अरे मूढ़ लोक सुन चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा याते जानी बे सकल। अब कहते चैतन्य महाप्रभु के कृपा के बगैर तो किसी का निस्तार होगा नहीं। कल जो भले कहां से लाए चैतन्य महाप्रभु का समाचार, तो कहते चैतन्य महाप्रभु का समाचार मिलेगा तो फिर चैतन्य महाप्रभु का नाम जपेंगे, फिर चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी, तब हरे कृष्ण मंत्र अपना फल दिखाएगा और प्रेम का अश्रुधारा आदि का अनुभव होना संभव है। तो ये सिद्धांत ये हो गया। तो अब कहां है ये चेतना महिमा याते जानी बेसकल, जिसके अंदर चेतना की सारी महिमा है। तो चेतना मंगल यहां शब्द लिखा है, तो चेतना मंगल। सो चेतना मंगल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज लिखते हैं चेतना वृंदावन दास ठाकुर, उनका चेतना भागवत जो है उसका पहले नाम चेतना मंगल था, और जब लोचन दास ना भागवत कहा तो चेतना मंगल और चेतना भागवत एक चीज है पहली बार। और दूसरा कविराज गोस्वामी आगे लिखते हैं कृष्ण लीला भागवत कहे वेद व्यास, चेतना लीला र व्यास वृंदावन दास। ये मुख्य श्लोक वृंदावन दास ठाकुर के दिन पे जो है महिमा का गाने का है। जैसे कृष्ण लीला भागवत कहे वेद व्यास, वेद व्यास ने और सब तो ग्रंथ लिखे, जब तक भागवत का विशेष रूप से भागवत वेद व्यास की परिपक्व अवस्था की वेदिक कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, ऐसे भागवत श्री कृष्ण की महिमा है, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण नहीं अन्य उनकी महिमा को वृंदावन दास ठाकुर ने गाई है। तो वृंदावन दास ठाकुर की क्या है कृष्ण लीला के वेद व्यास, भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे वेद व्यास, कृष्ण लीला के वेद व्यास चेतना लीला में वृंदावन दास, और वृंदावन दास की जो पहचान कवि कर्णपुर ने की है वो दूसरा क्या है, इसके साथ वेद व्यास के साथ भगवान श्री कृष्ण का सखा कुसुम पीड़। कभी एक बात ऐसे कह रहे थे, कभी अर्जुन भगवान का नित्य सखा है लेकिन इंद्रदेव उसमें आवेश करके भगवान की सहायता के लिए आए, तो ऐसे वृंदावन दास ठाकुर और कुसुम पीड़ ये दो पर्सनालिटी वृंदावन दास ठाकुर में है। कहीं हम ऐसे कह रहा था, बोला ये डबल सिम वाला फोन है। भाई आज के लोग को कैसे समझाया जाए कि भाई दो आदमी एक में है, बोले एक फोन में दो सिम है, कभी सिम वन से बात करो कभी सिम टू से करो। तो एक में दो हो सकते हैं ना, तो ये दो पर्सनालिटीज एक में ऐसे, तो इनकी पहचान ये है कृष्ण लीला में कि एक वृंदावन दास ठाकुर वेद व्यास भी है और कुसुम पेड़ भगवान का सखा भी है। अच्छा, अब उसके बाद आगे लिखते हैं, वृंदावन दास कैले चेतन मंगल यहां सर्वण नासे सर्व अमंगल, यह है आशीर्वाद। जो वेदव्यास जो वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा चेतना मंगल जिसको चेतना भागवत कहते हैं, इसका क्या करे कोई, श्रवणे, केवल श्रवणे, ये बहुत बड़ा विशेष एक आशीर्वाद है कि भागवत का श्रवण, और श्रवण करने से सब अमंगल जाए, भगवान हृदय में प्रकट हो जाए, सब अभद्र नाश हो जाए, इसमें और कुछ करना नहीं है, केवल श्रवण करना है। यज्ञ करोगे उसके बाद फल मिलेगा नहीं मिलेगा कोई भरोसा नहीं, कोई उसका विश्वास नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल श्रवण करना है, कुछ अपने तरफ से करना भी नहीं है। ये कितना शक्तिशाली साधन है कि केवल श्रवण मात्र से भगवान, जैसे भागवत में लिखा है, भागवत से भगवान प्रकट होकर भक्त के कानों के द्वारा हृदय में जाकर सारा ही मैल धो देते हैं, ऐसे चेतना चरितमृत का भी यही भाव, यहाँ चेतना भागवत का लिखा है कि चेतना महाप्रभु इस तरीके से सारा अमंगल अपने भक्त का धो के साफ कर देगा। इससे सिद्धांत वही हो गया जो भागवत का सिद्धांत है, केवल श्रवण मात्र से और कुछ नहीं करना, केवल श्रवण मात्र से सारा अमंगल नाश हो जाता है। चेतना नितायर याते जानी ये महिमा, याते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांत रसीमा। तो चेतना मंगल से हमको क्या मिलेगा, चेतना नितायर याते जानी ले महिमा। तो सिद्धांत क्या आ रहा है कि जब तक नित्य गौर नित्य की कृपा नहीं होगी तब तक हरि नाम अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो गौर नित्य की महिमा कहां से मिलेगी, बोला वृंदावन दास ठाकुर के चेतना मंगल से, चेतना भागवत से मिलेगी। तो चेतना भागवत में क्या है, बोला चेतना भागवत में है नित्य और चेतना की महिमा, और उस महिमा को जान से के जाते जाने कृष्ण भक्ति, और उसके जानने से कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा, कृष्ण भक्ति के सिद्धांतों की सीमा, मतलब परिपूर्ण कृष्ण भक्ति और उसके सिद्धांत। अब ये इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आगे लिखा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि गौर नित्य की सिर्फ पूजा करने से राधा कृष्ण की पूजा को हटा देना, ये उद्देश्य नहीं है। एक तात्पर्य सुधा ऐसे लिखा है कि ये राधा कृष्ण की पूजा करने का अधिकार हमको इन गौर नित्य की कृपा से मिलता है। ऐसे कहता कब क्या भजन गाया है नरोत्तम दास, कभी हो गए आकुटि राधा कृष्ण लीला वृंदावन चेतन महाप्रभु, क्या भजन का शब्द है, कब गौर नेता है कृपा करेंगे, अनर्थ सारा नाश होगा और वृंदावन में जाके राधा कृष्ण की सेवा करूंगा। नेता करुणा होवे, संसार वासना क्षय होए और विषय छाड़े कभी शुद्ध होए मन है सभी होरी वो वृंदावन। तो ये भाव ये है कि राधा कृष्ण गौर निताय की उपासना तत्काल हृदय की शुद्धि करके राधा कृष्ण के प्रेम को प्रकट करने के लिए, क्योंकि उनके अवतार का उद्देश्य ये है और इस उद्देश्य को उन्होंने प्रकाशित कैसे किया, बस चेतना महाप्रभु किस लिए आए, कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए आए। तो कृष्ण प्रेम के बांटने का पहले उन्होंने जो प्रथम कृष्ण प्रेम का उन्होंने पहले कृष्ण प्रेम देने के लिए आए चेतना महाप्रभु, किसके लिए, चेतना महाप्रभु के आने का उद्देश्य क्या है, चित्त चिरादितम निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृत अति उदार गौरा। श्री चेतना महाप्रभु जो कभी बहुत समय से नहीं दिया गया था, क्या नहीं दिया गया था, कृष्ण प्रेम नहीं दिया गया था, उस कृष्ण प्रेम को देने के लिए आए। बोले कृष्ण प्रेम कैसे, बोले स्व नाम अमृत, भगवान श्री कृष्ण के नाम के रूप में कृष्ण प्रेम को देने के लिए आए। तो चेतना महाप्रभु ने ये पहले प्रयोग कहां किया, इस बात का प्रयोग कहां किया चेतना महाप्रभु ने पहले, ओ एक दिन चेतना महाप्रभु के मन में आवेश आ गया, आवेश क्या आया, और सीधा श्रीवास जी के आंगन में आके कहते मैं हरि हूं, और जहां उनकी पूजा होती थी था उसके ऊपर बैठ गए, बोले मैं हरि हूं। अब सब हरि हूं तो सब देख रहे हैं, तो पहले हरि का प्रभाव दिखाने के लिए 4 साल की उनकी भतीजी, किसकी भतीजी, श्रीवास पंडित की भतीजी, उनके बड़े भाई नलिन की बेटी, उनको कहा नारायणी नाम था, उसको कहा तुम कृष्ण बोलो और रो, कृष्ण के नाम का उच्चारण करते तुम्हारे आंखों से आंसू ना, और नारायणी कृष्ण कृष्ण कह के इतनी विभोर हो गई, आंखों से आंसू आने लगे और सब चमत्कार देख रहे। 4 साल की ये छोटी बालिका, महाप्रभु ने कृष्ण प्रेम का पहले ऐसे जो है प्रयोग किया नारायणी के ऊपर, जो श्रीवास ठाकुर की भतीजी थी। और नारायणी कौन थी, तो नारायणी की पहचान लिखी है कवि कर्णपुर ने कि कृष्ण भगवान की सेवा के लिए जो जिसको कहा जाए माता के साथ जो दूसरी सेवकाएं होती थी, तो उसमें एक अंबिका थी और एक किल अंबिका थी, तो अंबिका तो बनी मालिनी श्रीवास ठाकुर की जो है अर्धांगनी, और उनकी बहन किलंबिका वो बनी नारायणी। तो ये दोनों कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण की सेवा के कार्य का सेवा कार्य इनका था। तो अब ये वृंदावन दास ठाकुर की माता नारायणी के ऊपर चेतना महाप्रभु ने पहले कृष्ण प्रेम का प्रकाश किया, और नारायणी का स्वभाव ये है कि अपने मुख से भगवान गौरंगा महाप्रभु ने जो चबाया हुआ पान का बीड़ा था उसके मुख में दिया और पूरा अपना प्रसाद भी उचिष्ट उनको दिया। ये बहुत कम ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि वो जो कलिन अंबिका थी वो भगवान श्री कृष्ण को बचपन में प्रसाद खिलाने के बाद सारा बचा हुआ प्रसाद खा जाती थी, तो उसको अभी भी चेतना महाप्रभु ने वो प्रसाद दिया, और उसका प्रभाव ये हुआ कि आगे चल के उनका विवाह वैकुंठ नाम के एक ब्राह्मण से हुआ। और ये वैकुंठ नाम का ब्राह्मण बहुत बड़ा सुशील ब्राह्मण था, लेकिन जब नारायणी के उदर में वृंदावन दास ठाकुर पल ही रहे थे तो वैकुंठ ब्राह्मण वैकुंठ दास का शरीर छूट गया और भगवत धाम चले गए। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा कि अब मेरी भतीजी जो गर्भवती है और विधवा है, तो उन्होंने आके अपने घर में पालन पोषण के लिए लाए, तो इसलिए वृंदावन दास ठाकुर के आविर्भाव का स्थान है मामगाछी। मामागाछी मामा गाची, तो क्या बंगाली मामा गाची का मतलब क्या, मामे का घर क्या कहते हैं? अंकल का घर, अंकल का घर, चाचा का घर, मामा गाची का, कहीं शब्द शब्दों का अर्थ है, हमको नहीं आता है तो हम उसको तो कछाई समझ लेते हैं। मामा काची, मामा गाची, तो वहीं उनका जन्म हुआ, लेकिन उनके पालन पोषण का भार किसने उठाया? ये बहुत बड़ा पालन पोषण का भार किसने उठाया? वासुदेव दत्त ने। वासुदेव दत्त का घर भी माम गाची में उधर ही है पास में, और वासुदेव दत्त वो महात्मा है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु क्या प्रार्थना की कि सारे संसार के लोगों का पाप मैं भोगता हूं और इन सबको भगवान के धाम भेज दो। ऐसा वासुदेव दत्त जिसके तो कैसे वो पीड़ा देख सकता है, एक विधवा नारी के बालन के बालक के पालन का सारा भार अपने ऊपर वासुदेव दत्त ने उठाया। और जब वासुदेव दत्त ने ऐसे कहा चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? आश्चर्य नहीं, तुम्ही साक्षात प्रहलाद, वासुदेव तुम प्रहलाद हो, ये आश्चर्य नहीं है तुम जो सारे जगत का पाप उठा रहे हो। और यहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ने क्या लिखा है कि एक जीसस क्राइस्ट कहता है कि पहले तुम शरण लो तब हम तुम्हारे पाप उठाएंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का एक एक पार्षद सारे जगत का पाप बगैर किसी कंडीशन के उठाने को तैयार है। कितने बड़े महान है महाप्रभु के पार्षद कि एक एक पार्षद जगत जगत को तारने के लिए तैयार है। और वैसे एक एक पार्षद इतना शक्तिशाली है, और उसका उदाहरण तो एक श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद, एक गौरवाणी का प्रचार करके पूरे जगत को तार लिया कि नहीं तार लिया? एक एक तारने की, एक एक व्यक्ति जगत को तारने की शक्ति रखता है चैतन्य महाप्रभु का पार्षद, ऐसे कहा है। और फिर आगे क्या कहा चैतन्य महाप्रभु ने, वासुदेव कृष्ण असमर्थ नहीं, कृष्ण असमर्थ नहीं है कि तुमको पाप भुगवाएगा और किसी का उद्धार कर देगा। आप वैष्णव कहो कि जगत का उद्धार हो जाए तो एक पूरे का पूरा ब्रह्मांड ही भगवान श्री कृष्ण कहता है जाने दो गोलोक में, एक ब्रह्मांड जाएगा तो खाली नहीं हो जाएगा। बोला एक सरसों का दाना बोरी से गिर गया था कोई ढूंढता है क्या? वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों से एक ब्रह्मांड तर गया तो कौन सा फर्क पड़ता है भगवान को, कृष्ण को क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे वैष्णव की कृपा से एक जगत, ऐसे किसी ने प्रश्न उठाया कि भाई जगत से सारे लोग भक्त बन के भगवान के धाम चले गए तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहे ये चिंता आप मत करो, बहुत से मूर्ख बैठे हैं ये भरने के लिए। और पिछला प्रभुपाद ने उत्तर क्या दिया था उस पत्रकार को जिसने कहा कि आप इतना प्रचार कर रहे हो सब भक्त बन गए तो दुनिया कैसे चलेगी, वो तेरे जैसे मूर्ख बहुत रहेंगे। उसको तो सीधा ही कहा फूल्स लाइक यू विल रिमेन, डोंट वरी। तो ये तो दुनिया भरती रहेगी, इसमें कुछ नहीं, ऐसा कभी कमी नहीं आने वाली है। सो नारायणी की विशेषता ये है कि चैतन्य महाप्रभु के प्रेम प्रसाद की कृपा पात्री बनी। उनको महाप्रभु ने पहले ही प्रेम का, कृष्ण प्रेम का सबके सामने नारायणी के माध्यम से प्रकाशित किया, और भविष्य में उनके द्वारा वेद व्यास को, वृंदावन दास को प्रकट करके चैतन्य महिमा का विस्तार किया। और वृंदावन दास ठाकुर श्री नित्यानंद के साक्षात शिष्य, अंतिम शिष्य में लास्ट वाले हैं। तो नित्यानंद ने स्वयं वृंदावन दास ठाकुर को अपना शिष्य स्वीकार किया, ये नित्यानंद के डायरेक्ट डिसाइपल है और ये आखिरी वालों में, और बहुत बड़े कृपा पात्र है नित्यानंद के। और चैतन्य महाप्रभु के सन्यास लेने के 4 साल बाद इनका जन्म हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु तो सन्यास लेके चले गए थे जगन्नाथपुरी में। कभी वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले इसका वर्णन नहीं मिलता है, उनके मिलने का कहीं वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन नित्यानंद की कृपा का इतना प्रभाव उनके ऊपर है, उन्होंने उनको कहा। उसके बाद वो राड़ देश में प्रचार करने के लिए गए वृंदावन दास ठाकुर। बचपन में वसुदेव दत्त ने उनका देखभाल किया, शास्त्रों का अध्ययन किया, और फिर प्रचार करने के लिए राड़ देश गए, और राड़ देश में चैतन्य नित्यानंद प्रभु से मिले, और नित्यानंद प्रभु ने शिष्य स्वीकार किया। और देंडोर, देंडोर क्या नाम है उस जगह का, अंग्रेजी में डी एन डी आर देंदोर, लेकिन मेरे ख्याल बंगाली में उच्चार करेंगे तो कोई अच्छा ही बनेगा, जैसे गांजीज, गंगा को क्या बोलते, अरे गंगा जी, हम कहते थे गंगा जी, अंग्रेज से प्रोनाउंसिएशन हुआ नहीं, बोला गंजी गंगा जी को गांजीज कर दिया, तो अंग्रेजी में ऐसे उदाहरण। अब रविंद्रनाथ ठाकुर को टांग पकड़ के टैगोर कर दिया, अब टैगोर नहीं है वो, ठाकुर है, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन उसका ऐसा है, गंगा जी गांजीज हो गई, ठाकुर टैगोर हो गया, तो ये दंडोर को गांव का नाम क्या कर दिया है मालूम नहीं है, क्या है, तांडोर, दंडोर, डी से आगे डी है। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप यहीं रहो, यहीं रहो, आपको चैतन्य महाप्रभु का यहीं दर्शन होगा और चैतन्य महाप्रभु की महिमा यहीं बैठ के गाओ। तो पहले वो मामगाछी में जन्म हुआ, वहां रहे, वहां पढ़े, उसके बाद जाके रार देश में नित्यानंद के आश्रित होकर और ये तांडोर क्या नाम जो है, इसी ग्राम में निवास किया, वहीं बैठ के चेतना मंगल लिखा है। चेतना भागवत लिखने का कविराज गोस्वामी ने चेतना चरितामृत कहां लिखा है, बैठ के राधा कुंड में, राधा कुंड में बैठ के लिखा है। तो चेतना भागवत कहां बैठ के लिखा है, रार देश में, कौन सी जगह पे, तांडोर ये नाम सीधा करो भाई, हरे कृष्णा, मिला, हरे कृष्णा। तो चेतना नीताय याते जानी बे महिमा, याते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत रसीमा। श्री प्रभुपाद लिखते हैं श्रीमद् भागवत प्रमाणिक शास्त्र है जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का सिद्धांत स्थापित होता है। जैसे श्रीमद् भागवत स्वयं व्यास देव का अपना ही तात्पर्य है वेदांत सूत्र का, और ये परम सत्य को समझने के लिए उन्होंने लिखा है। यहां प्रभुपाद प्रचार के मूड में है, इसके परपर्ट में यहां प्रभुपाद का प्रचार का मूड हो गया, वो भागवत को गाने बजाने के लिए रासलीला नहीं गाना चाहिए, उसके अंदर सिद्धांत को समझना चाहिए, कृष्ण भक्ति का प्रकट्य होना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य उस भाव से दिया है। अब आगे लिखते हैं, भागवत यते भक्ति सिद्धांत रसार लिखिया छे न इहां जाने करिया उधार। तो वृंदावन ठाकुर ने कहा जैसे भागवत भक्ति सिद्धांत का सार है, तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की भागवत लिखकर पूरे जगत के उद्धार का ये कार्य किया है। चैतन्य मंगल सुनी यदि पाषंडी यावन से महावैष्णव है तत्क्षण। अब चेतन मंगल का प्रभाव बताते हैं कि कोई महापाखंडी, पाखंडी कौन होता है, नास्तिक, कोई नास्तिक पाखंडी यवन अगर चेतना मंगल सुने तो वो भी महावैष्णव तत्क्षण हो जाए। अरे कृष्णा, चेतना भागवत, कविराज गोस्वामी कहते हैं, आगे लिखते हैं कि क्योंकि नित्यानंद के महिमा गाने में वृंदावन दास ठाकुर इतने मगन हो गए कि कुछ शेष चरित्र चेतना महाप्रभु के उन्होंने हमारे लिए छोड़े हैं, जो हम विस्तार से लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ये अंतलीला में ऐसे लिखते हैं। तो ये चेतना मंगल ऐसा है, तो इसलिए हमको इससे क्या सीखना चाहिए, हमसे ये सीखना चाहिए जहां प्रचार करने जाएं वहां भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का निश्चित रूप से वर्णन करे, क्योंकि वो जितना प्रभाव डालेगा कलयुग के लोगों के हृदय के ऊपर उतना सामान्य प्रचार नहीं डालेगा। आश्चर्य लगता है चैतन्य श्री प्रभुपाद ने 1966 में इस्कान की स्थापना की और उसी समय चैतन्य चरितामृत के प्रवचन भी उनके मिलेंगे 66 में। और जो पुस्तक प्रभुपाद जी पूरे जलदूत में यहां से साथ पढ़ते हुए जा रहे थे वो चैतन्य चरितामृत था। उनके साथ चैतन्य चरितामृत पूरा महीना साथ था, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ही ये विशेष प्रभाव। इसलिए प्रमाण क्या है इस बात का कि चैतन्य महाप्रभु की महिमा जगत का उद्धार करेगी? कोई हमसे पूछे इसका प्रमाण क्या है, हम पूछते हैं लोगों, कहते हैं कि आपको इस्कान के मंदिर में आते हो सबसे अच्छा क्या लगता है, तो सभी लोग क्या विशेष क्या बात कहते हैं? आपकी शाम की आरती। आप पूछे, क्योंकि सुबह मंगल आरती में तो वो आते नहीं है, तो उसको पता नहीं है भाई आएंगे तो भी वे तो आएंगे नहीं, लेकिन शाम की आरती उनको बहुत अच्छी लगती है। लेकिन उनसे पूछो क्या गा रहे हैं, उनको आज तक किसी को पता नहीं है। किसी को पता नहीं है कीबा जयो जयो गौर चंद्र आरती को, लेकिन वो भी नाचते हैं। ये है प्रमाण के चैतन्य महाप्रभु की महिमा, कैसा भी व्यक्ति हो जाने न जाने लेकिन नाचेगा। ये सच है कि झूठ है? कहीं भी जाके पूछो लोग यही कहेंगे कि हमको इस्कान मंदिर की शाम की आरती आपकी और खिचड़ी प्रसाद, ये दो चीजें मुख्य सबको पसंद है। तो शाम की आरती उनसे पूछो क्या गाते हैं, बोले पता नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की महिमा गाते हैं, इसलिए लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है, उनको आश्चर्य लगता है, खड़े खड़े नाचने लगते हैं, सुनने समझते नहीं है लेकिन उसका प्रभाव इतना होता है। तो इससे एक बात प्रेरणा यहां लेनी चाहिए कि जहां भी हम जाएं कैसे भी चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन जितना हम करेंगे उतना लोगों का उद्धार ज्यादा होगा, उतना लोगों का उद्धार, क्योंकि अन्य के प्रति लोगों का अब मानो कृष्ण का वर्णन करते हैं, करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों को कृष्ण ऐसे किया, कर्ण को मरवा दिया, कृष्ण अपराध कर लेते हैं लोग उसमें, लेकिन महाप्रभु की लीला में अपराध माफ है, उसमें अपराध किसी को लगेगा नहीं। तो कृष्ण लीला में बहुत से लोग अपराध कर लेते हैं कथा सुनते सुनते, लेकिन इसमें अपराध है ही नहीं, ये अपराध शून्य है, किसी को अपराध लेते ही नहीं है। अब आगे कहते हैं मनुष्य रचिते नारी आयचे ग्रंथ धन्य। अब कविराज गोस्वामी कहते हैं कोई मानव ऐसा ग्रंथ लग सके ये संभव नहीं है। कविराज गोस्वामी कहते हैं मनुष्य रचिता नारी आचे ग्रंथ धन्य, ये चेतन मंगल चेतन भागवत धन्य है, क्योंकि मानव का लिखा हुआ नहीं है। तो किसने लिखा है? वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य, वृंदावन दास के मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु ने लिखवाया है। वैसे इतिहासकार लिखते हैं क्योंकि नारायणी वृंदावन दास की माता ने चैतन्य महाप्रभु की सारी लीलाएं देखी थी, नारायणी सारी लीलाओं की साक्षी थी और नारायणी रोज कथा बताती थी वृंदावन दास ठाकुर को चैतन्य लीला की, तो वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसका था, सुनी हुई नहीं थी, देखी हुई थी। और दूसरा उन्होंने मुरारी गुप्ता के नोटबुक से लिखी हुई चैतन्य लीला को लिया। तो वृंदावन दास ठाकुर ने जो लिखा है कहां से लिखा? एक मुरारी गुप्ता के नोटबुक से और दूसरा साक्षात अपनी मां से सुना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि माताएं पहले साक्षात, जैसे हम परीक्षित महाराज की बात करते हैं, उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा को देखा था, उनकी करुणा कृपा को देखा था, कैसे परीक्षित की रक्षा की, तो परीक्षित ने बचपन से उत्तरा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा की महिमा का आंखों देखा हाल सुना था, तो वो तो साक्षी थे ना उसके। इसी कहते हैं जब ये सारे ठाकुर बन रहे थे तो उत्तरा उस वक्त वृंदावन में जो गोविंद देव गोपाल देव गोपीनाथ ये बने हैं, तो उत्तरा तो साक्षात उनको देखा हुआ था ठाकुर जी को, तो ये साक्षात इनके साक्षी है इन सारों के। और इस बात को ध्यान रख के परंपरागत जैसे आगे चल के अपने भागवत वेदांत सूत्र के ऊपर टीकाकार गोविंद देव के मंदिर में बैठ के जब बलदेव विद्याभूषण में टीका लिखी तो क्या लिखा, गोविंद भाष्य, हमने नहीं लिखी है, गोविंद देव ने लिखा ये। और श्रील प्रभुपाद ने अपने पुस्तकों को पढ़ते हुए, श्रील प्रभुपाद अपने पुस्तक पढ़ते थे कि ऐसे मैं कैसे लिखा, मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, अपने आप कहते थे मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, किसने लिखा है। तो एक बार कुछ पत्रकारों को ये ध्यान में आया कि इस वृद्ध व्यक्ति ने 70 साल में संस्था की स्थापना की और कोई 8-10 साल में इन्होंने कोई 60 से ज्यादा पुस्तक लिख ली। तो वो पूछने के लिए आ गए पत्रकार और आके पूछा, स्वामी जी आपने इतना सारा साहित्य लिखा, कैसे लिखा। तो प्रभुपाद जी शांत रहे, तो शिष्य उत्साह में था, बोले ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गॉड, भगवान ने इनको प्रेरणा दी। तो पत्रकार तो सब रिसर्च करके आए थे ना, बोला इंस्पायर तो एक मूसा को भगवान ने किया था, इतिहास में द ओनली पर्सन इंस्पायर्ड बाय गॉड वॉज मूसा। तो उन्होंने कहा ये मूसा के बराबर है क्या। तो वो थोड़ी देर कुछ नहीं बोले प्रभुपाद, तो प्रभुपाद से पूछा सीधा, इज ही टेलिंग राइट, कि आपका शिष्य सही कह रहा था, आर यू इंस्पायर्ड बाय गॉड। बोला नो, प्रभुपाद का नहीं। बोला देन आई एम डायरेक्टेड बाय गॉड, प्रभुपाद का आई एम डायरेक्टेड बाय गॉड। वो बेचारा बोरी बिस्तर उठा के, बोला इसके बाद तो कुछ होता नहीं है, अब और क्या पूछूं, कि डायरेक्टेड बाय गॉड तो और क्या पूछूं अब। तो प्रभुपाद के भगवान ने मुझसे लिखवाया, जैसे यहां लिखा है कविराज गोस्वामी कहते वृंदावन दास मुख्य वक्ता श्री चैतन्य। तो श्री प्रभुपाद मुख्य वक्ता कौन है, श्री कृष्ण गौर निताय है, उन्होंने लिखवाया सब कुछ। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए जैसे गौरंगा महाप्रभु का प्रचार में कहना जरूरी है लोगों के हृदय को शुद्ध करने के लिए, ऐसे लोगों का कल्याण तब होगा जब लोग ऋषि ऋण से मुक्त होंगे। और इस वक्त पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ऋषि है जिसके पुस्तक जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक किसी का कल्याण नहीं होगा। एक ऋषि ऋण होता है जिससे सबको ऋण होना चाहिए, और ऋषि ऋण कहते हैं शास्त्र पढ़ने को। और इस वक्त जो 10,000 साल तक शास्त्र इस धरती के ऊपर है, ये प्रभुपाद जी के पुस्तक है, ये ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए। और वो तब पढ़ेंगे जब लोग आज भी भगवान को नहीं जानते हैं। भाई ये ईसाई लोग भगवान को नहीं जानते, ये हजरत ईसा हो गया, सब कुछ हो गया, उसने जो कहा वो आखिरी। ऐसे भगवान को तो मोहम्मद लोग भी नहीं जानते हैं, जो हमारे पैगंबर ने कह दिया वो आखिरी। ये भावना है, भगवान के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसे हमारे भारत में भी प्रायः लोग कहते हैं जो शंकराचार्य ने कह दिया वो आखिरी। ऐसे जब तक लोग प्रभुपाद ने लिखा वो आखिरी नहीं समझेंगे उस स्तर के ऊपर, तब तक असल में ये संस्था जो है उस वो जो प्रभाव इसका होना चाहिए उस तक आने के लिए ये बहुत मुख्य एक कार्य है। ये लाइन को ध्यान रखना चाहिए, वृंदावन दास मुख्य है वक्ता श्री चेतन। ऐसे श्री प्रभुपाद के पुस्तक जो है वो भगवान ने, वही प्रभुपाद के अपने शब्द के भगवान ने मुझसे लिखवाए। तो जब तक लोग प्रभुपाद की इस कृपा को समझेंगे नहीं तब तक लोगों का निश्चित रूप से चैतन्य, जैसे चैतन्य तक चैतन्य चैतन्य नहीं पढ़ेंगे तब तक उद्धार नहीं होगा, ऐसे प्रभुपाद को जब तक लोग ठीक तरह से नहीं समझेंगे। इसलिए हमारा मुख्य कर्तव्य यह है कि प्रभुपाद की स्थापना उस स्तर के ऊपर करनी चाहिए जो समाज के अंदर विश्वस रूप संस्थापित आचार्य की स्थापना होती है। ये मुख्य कर्तव्य है हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों का, जब उसको उस तरीके से स्थापित करेंगे और उनके पुस्तकों का इतना प्रभाव रहेगा इस पृथ्वी के ऊपर, तब जाके कैसे लोगों का कल्याण हो सकता है। और अब कहते हैं, वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, आप भी बोल दीजिए, कविराज गोस्वामी कह रहा है आप भी बोल दीजिए। आप वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करी ते हूं तारीला संसार। ये बहुत बड़ी बात है कि उसको हम कोटि नमस्कार करते हैं कि ऐसा ग्रंथ दे के पूरे संसार को तार लिया। अब आगे
माता नारायण की बात की, नारायणी चैतन्या उत्तिष्ट भजन तोहर गर्भ जन मिला श्रीदास वृंदावन। अभी आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं ये तो चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद था नारायणी के, वैसे लिखा तो शब्द ऐसे नारायणी चैतन्या उत्तिष्ट उत्तिष्ट भजन उसका प्रसाद पाया, और वो इसका ये अर्थ है कि चैतन्य महाप्रभु के प्रसाद के रूप में वृंदावन दास ठाकुर नारायणी के माध्यम से दुनिया को मिला, इसका अर्थ ये होना चाहिए कि ये प्रसाद है चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद है वृंदावन दास ठाकुर। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके मुख से बोले, तो मुख से खाया हुआ प्रसाद नारायण ने खाया और मुख से वृंदावन दास से चैतन्य महाप्रभु बोले, और ये ग्रंथ ऐसे धरती के ऊपर आया। और फिर यहां उनकी श्री प्रभुपाद जी ने लिखा है जो हम बात कर चुके हैं, अंबिकाय स्वस्थ सने नम शिला किलंबिका, तो ये जो इनकी पहचान है उस पहचान का वर्णन यहां लिखा है जो अभी हम कह चुके। और यहां मेरे ख्याल में तहार की अद्भुत चेतन चरित वर्णन यहाँ रवणे शुद्ध कैला त्रिभुवन। तो ऐसा आज वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है चेतन महाप्रभु का कि त्रिभुवन को शुद्ध कर दिया है, ये उनकी चेतन भागवत की महिमा गा रहे हैं वृंदावन कविराज गोस्वामी। अतएव भज लोक चेतन्य नित्यानंद खंडी बे संसार दुख पावे प्रेमानंद, दुख पावे प्रेमानंद। इसलिए अब कह रहे हे दुनिया वालों चैतन्य नित्यानंद का नाम गाओ लोको, और संसार के दुख को खंडित करो और परमानंद को पाओ। तो प्रेरणा क्या लेनी चाहिए आज के दिन कि चैतन्य भागवत हमको पढ़ना चाहिए। ये असल में वृंदावन दास ठाकुर की अपीयरेंस डे की महिमा सुनने से हमारे को प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम चेतना भागवत का अगले चेतना अगले वृंदावन दास ठाकुर के जन्म तक मतलब अगले साल तक कम से कम इसको पढ़ के पूरा करें, ऐसा कोई संकल्प करना चाहिए। तो है इसका फल, इसका फल ये है कि चेतना भागवत को पढ़ने का हम संकल्प करें। ये सेवा जैसे चेतना महाप्रभु की सेवा कैसे होती है, पूजा कैसे होती है, हरे कृष्ण महामंत्र से हरे कृष्ण कीर्तन करो चैतन्य महाप्रभु की पूजा हो गई। ऐसे वृंदावन दास ठाकुर की कृपा पानी है तो चैतन्य भागवत पढ़ना है, चैतन्य भागवत पढ़ेंगे इतनी उसकी महिमा लिखी है कि सबका उद्धार कर देगा। तो चैतन्य भागवत पढ़ने का कोई क्या करना चाहिए, तो ये तो आप अपनी कोई स्पेशल कम से कम ब्रह्मचारियों की भागवत चैतन्य भागवत की क्लास शुरू होनी चाहिए, भाई कुछ करना चाहिए क्यों मौन रूप चेतना भागवत क्लास है। ये आज कह रहे हैं तो कम से कम इनका चेतना भागवत का तो एक साल में पढ़ के पूरा करना चाहिए, कोई पेपर वेपर नहीं है लेकिन पढ़ लेना चाहिए क्यों पेपर से सब परेशान है नहीं ये इतनी सारी महिमा लिखी है तो इसका मतलब हमको प्रेरणा मिलनी चाहिए कि चेतना भागवत का हम अध्ययन कर ले। वृंदावन दास कैला चेतना मंगल तहते चेतना लीला वर्णित सकल, सारी चेतना महाप्रभु ने की लीला को उन्होंने वर्णन किया। सूत्रे करी सब लीला करीला ग्रंथन पाछे विस्तारीला तहार कैला वर्णन। ये किसी अच्छे वक्ता किसी अच्छे राइटर की पहली पहचान क्या है, कोई चीज सूत्र में कहेंगे। इसलिए भगवत गीता में दूसरे अध्याय का नाम क्या है, सारे गीता को थोड़े में सूत्र में कह दिया, फिर अर्जुन के प्रश्न पूछने के ऊपर विस्तार किया और एंड में फिर 18वें अध्याय में समरी दे दी। अच्छे राइटर अच्छे प्रवक्ता के ये पहचान है कि पहले थोड़े में कोई सूत्र में कहेगा, तब किसी में प्रिया किसी में जिज्ञासा पैदा होगी, कुछ पूछेगा तो विस्तार करेगा तब वो समझेगा, और जब पूरा पढ़ा ले तो फिर उसकी समरी कर लेनी चाहिए। तो ये यहां कहते हैं पहले उन्होंने सूत्र दिया और फिर विस्तार किया। अब विस्तार करते करते क्या हो गया, तब ये कहते हैं चैतन्य चंद्र लीला अनंत अपार वर्णिते वर्णिते ग्रंथ हैला विस्तार। और जब दोबारा विस्तार करने लगे तो इतनी लीला अनंत थी कि अब ग्रंथ बड़ा होने लगा, पेपर ग्रंथ बहुत बड़ा होने लगा। तो फिर उन्होंने क्या किया, विस्तार देखिए किछु संकोच हैला मन सूत्र धृत कौन लीला न कैला वर्णन। तो उन्होंने कुछ लीलाओं को सूत्र में ही छोड़ दिया और कुछ का विस्तार किया। ये ऐसे क्यों लिख रहे हैं कविराज गोस्वामी कि जहां जहां उन्होंने छोड़ा है वही मैं गैप फिल कर रहा हूं, उनके लीला जो सब कुछ उन्होंने ही कह दिया है, मैं तो उनकी सेवक के रूप में कुछ कर रहा हूं। और बोला कहां छोड़ा है, तब कहते नित्यानंद लीला वर्णन हैला आवेश चैतन्य शेष लीला रहिला अवशेष। क्योंकि वो नित्यानंद के पार्षद थे, उनके संग और चैतन्यानंद के जाने के बाद भी वृंदावन दास ठाकुर माँ जानवा के साथ खेतुरी वाले फेस्टिवल में भी गए, जो महाप्रभु का पहला गौर पूर्णिमा मनाया गया उसमें माँ जानवा के साथ गए हैं, तो उनका वर्णन यहां मिलता है। लेकिन वो नित्यानंद की लीला के वर्णन में इतना आवेश में आ गया कि कुछ चैतन्य लीला को शेष छोड़ दिया या रह गई, ये कविराज गोस्वामी कहते। से सब लीला र सुनिते विवरण वृंदावन वासी भक्तेरा उत्कंठ मन। अब कहते हैं कविराज गोस्वामी मुझे वो लीला जो कुछ रह गई थी, कौन सी, अंत लीला, विशेष रूप से जो अंत लीला महाप्रभु की गंभीरा में हुई, उसको वृंदावन के भक्त मतलब छह गोस्वामियों को बड़ी उत्कंठा थी सुनने के लिए, इसलिए वो लीला कविराज गोस्वामी ने लिखी है। तो अपनी बात अब कर रहे हैं कि मेरे को कैसे आदेश हुआ इस लीला को लिखने का, समय यहां समाप्त होता है। तो वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का आदि व्यास है, बाकी जितने भी व्यास भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी कहते हैं जो भी चैतन्य महाप्रभु की महिमा गाता है वो सब व्यास है, लेकिन आदि व्यास वृंदावन दास, तो जो भी उसकी वर्णन करेगा उसको व्यास कहेंगे। तो यहां वाणी को विराम देते हैं, कुछ और इसमें लीलाओं का वर्णन हो तो कर सकते हैं, लेकिन आज का संकल्प ले लें कि हमको अगली बार तक चैतन्य भागवत एक बार पढ़ लेना है, अभी तो अवेलेबल है, इस कान में आ गई है, और तो इसको पढ़ने का, ये चैतन्य, ये वृंदावन दास ठाकुर की हमारी जो है वो श्रद्धांजलि होगी, अथवा ये उनकी महिमा आज के दिन संकल्प हो तो अच्छा है। हरे कृष्णा। और कुछ प्रभु जी को माइक दीजिए, कुछ आशीर्वाद के वचन कहेंगे, और भी कोई लीलाओं में है तो कोई सारे देनो देनोर देनोर ये देनोर देनोर दीनोर जैसे दीनापुर है ऐसे देनोर 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 की जगह पे बैठ के उन्होंने चेतना मंगल लिखा। प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रभु जी को माइक दीजिए। यही माइक निकलेगा, निकालो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Thank you.